ओम शांति। आज 10 अगस्त 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, क्या कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? कौन सी एक ऐसी रस्म है जिसके आधार पर हम बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं? कौन सी ऐसी रस्म है? भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। श्राद्ध करते हैं ना, पितर खिलाते हैं, तो उसमें क्या होता था पहले कि किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, फिर उनसे बातें करते। पहले वो आत्मा को बुलाते थे, फिर उनसे बातें करते, उसकी आश पूछते, तेरी कोई इच्छा है तो बताओ। अब शरीर तो आता नहीं, शरीर तो आता नहीं, बुलाते आत्मा ही आती है, बुलाते हैं तो कौन आएगी, आत्मा आएगी, शरीर को तो हमने जला ही दिया। ये भी ड्रामा में नूंद है कि जब वो आत्मा प्रवेश कर सकती है तो उसी प्रकार से परम आत्मा भी पर काया में प्रवेश करते, उनको समझाना है। उसी प्रकार से परमात्मा भी पर काया में प्रवेश करते हैं, इसको अवतरण कहा जाता है। ये तुम बच्चे सिद्ध करके उनको समझा सकते, क्योंकि उनका प्रश्न रहता है कि भगवान कैसे आएगा। वो समझते हैं जैसे राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, बाकी सभी जिनको हम भगवान कहते आए हैं, देवता कहते आए हैं, उन्होंने जैसे जन्म लिया ऐसे परमात्मा ने भी जन्म लिया हो, परंतु परमात्मा कहते मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, मैं पर काया में प्रवेश करके तुम सबको सत्य मार्ग दिखाता हूं, जिससे तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शांति। ये भी गायन है, ये भी गायन है कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी तो दूसरे मोहल्ले में तो ना होगी, उसी गली में होगी। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती, सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है, अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते। दुनिया कायम है, दुनिया कायम है, कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं, जब उठाते हैं लास्ट में राम नाम सत्य है, ये भी भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परमात्मा, परमपिता, परमात्मा जो है वो सच, वो सच, उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी वो फिर राम राम कह करके सिमरते हैं, परंतु जानते नहीं। राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई सास गीत बज रहा हो, परंतु जानते नहीं कि राम कौन है। उनकी बुद्धि में बैठ जाता है दशरथ का बेटा राम, जबकि मैं हूं राम, तुम सब सीताओं का, तुम सब भक्तियों का राम मैं हूं। वो समझते दशरथ का बेटा राम, हो गया बेड़ा गर्क। हां जी, वो राम तो सत्य नहीं है, दशरथ के बेटे राम ने तो जन्म लिया, शरीर धारण किया और मौत को प्राप्त हो गया। अब वो तो सत्य हो नहीं सकते, वो तो झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, कोई भी आवाज नहीं करनी, राम राम नहीं कहना तो शिव शिव भी, कोई भी आवाज नहीं करनी, बाबा बाबा तो कह सकते हैं, कोई भी आवाज नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से याद करना कि बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया है, वो बुद्धि से चलना। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती, फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे, गाया भी जाता है रुद्र माला, रुद्र माला, राम माला नहीं। राम और रुद्र में क्या अंतर है भाई? रुद्र माना शिव, रुद्र माना राम नहीं, शिव राम है, परंतु दशरथ का बेटे वाला बेटा राम नहीं। शिव को राम कह सकते हैं क्योंकि वो सबके दिल को आराम देने वाला है, बिला राम है, वो शरीर का आराम देने वाला नहीं। अब एक मुरली में बाबा ने कहा, मैं सब आत्माओं के दिल को आराम देने वाला हूं, शरीर के दिल को आराम देने वाला। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे, गाया भी जाता है रुद्र माला, राम माला नहीं गाया जाता। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे, रोजाना सवेरे सवेरे उठ के आ जाते हो, तुम्हें नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तुम्हें, सवेरे सवेरे उठ के आ जाते हो, हाँ जी सोया नहीं, हाँ सबको आ जाते, जिसको भी आनी है दिन में, यहाँ आकर भी बाबा मतलब भाई जी कह रहे हैं कि यहाँ भी आकर के भी नींद आ जाती है। रात को नहीं सोएगा तो फिर यहाँ आके तो नींद करेगा ना, नींद पूरी नहीं होगी तो फिर यहाँ आके तो नींद पूरी करनी पड़ेगी ना। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, कल्प कल्प पहले माफी, हर कल्प आप इसी प्रकार से आकर बैठ, दूसरा कोई सत्संग नहीं, जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले का हार बनेंगे। ईश्वर गले के हार में पिरोए जाएंगे, ऐसा कोई दुनिया में सत्संग नहीं है जहां वो ऐसे बैठकर सोचते हो। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, बाप कौन कहता है ये भी नहीं जानते। हम जानते हैं कि बाप कौन कहता है, दुनिया वाले नहीं जानते कि बाप कौन है। किसने कहा कि हमारा बाप है? आत्मा ने। या हम जानते हैं कि आत्मा ने कहा परमात्मा हमारा बाप है, परंतु दुनिया वाले क्या समझते हैं, शरीर अपने आप को और बाप भी शरीर वाला ढूंढते हैं, जैसे खुद वैसा बाप ढूंढते, वो कैसे समझे कि बिना शरीर वाला हमारा बाप होगा, हमारे जैसा होगा ना बाप हमारा, खुद को देह समझते तो देह वाला परमात्मा ढूंढते। आत्मा में ही बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है, पहले संकल्प आता है फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने, बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे इस अंतिम जन्म में, गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है, तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी है, कैसे कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है, बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बहुत बाह्य बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है, फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है, श्री कृष्ण क्या है, साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए, श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले हैं, भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सब जगह है, बाप तो अपने घर में ही रहते हैं, और कहां रहेगा, और कहां रहेगा, अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है, कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप को पितर को खिलाते हैं, अपने बाप के पितर को खिलाते हैं। अब ब्राह्मण बुलाया है, श्राद्ध कर रहे हैं, जा मेरे पिताजी का क्या है, श्राद्ध। तो आत्मा कहती थी पहले कि मैं इनमें आया हुआ हूं, ठीक है, मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना है तो पूछो। बच्चे खुश। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना, पितर कौन है, पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, परंतु पंडित के पास ये ताकत है ही नहीं कि आत्मा को बुला सके, परंतु उसको पिता समझकर खाना भी खिलाएंगे, पीसे भी देंगे, कपड़े भी देंगे, और भी कोई दिल है तो वो भी देंगे। हाँ बिल्कुल। पहले पहले क्यों कहा ब्राह्मण थे तो हमारे घर दुनिया भर के साफे ही साफे, मतलब साफा दे देते थे ना, गरीब आदमी साफा दे देते थे, अब दुनिया भर के साफे ही साफे ढेर लग जाता था श्राद्ध कराकतों में। कोई कोई कपड़े दे देते थे, कोई अच्छे देते, कोई कैसे देते, कोई कैसे, जैसे जैसे जिसकी अवस्था होती है। तोलिए ज्यादातर यही देते हैं, साफे तोलिए ऐसे जैसा उनका अवस्था होती है। फिर सेल लगा देते, ले जाओ भाई, खिलाया जाता। समझो किस क्या स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की पुल्ली पहनाने का वायदा किया था। तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की पुल्ली पहनाते हैं, किसको मिली, ब्राह्मण को। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े आएगा। ये रस्म भारत में ही है, जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है, सूक्ष्म वतन में वे आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई बात। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए, तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि ये क्या करते, ये क्या करते। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है, सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं, गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वो कहां गए, कहां है, अब वो कहां है, ये समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वे सब यहां हैं, जितने भी धर्म पिता आए वो भी सब यही हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं, ये तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापना करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। इस समय सभी आत्माएं कहां हैं, कहां, यही है कि परम धाम में है, यही है तो कहां है, सारी आत्माएं इस समय कब्र दाखिल है। सभी आत्माएं कब्र, हम भी कब्र दाखिल थे, हम अभी आंखें खोल रहे हैं, कब्र से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकले नहीं है, समझ रहे हैं जी, हाँ समझ रहे हैं कि हाँ हम आत्मा हैं, बाकी थोड़ी देर बाद फिर अपने आप को क्या समझ लेते हैं, शरीर, फिर कब्र में सो जाते। सवेरे सवेरे बाबा आकर कब्र से निकालता है, कभी कभी कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी दिखाई दे जाए तो फिर याद आ जाता है कि हम आत्मा हैं, कोई सीरियल टेलीविजन पर दिखाई दे जाए पीस ऑफ माइंड तो याद आ जाता है आत्मा है, और नहीं तो फिर शरीर समझ के भूल जाते। बाकी पुरुषार्थ कौन कितना कर रहा है वो उस आत्मा का अपना पार्ट है। बाबा तो है ही पतित पावन, वे कभी कब्र दाखिल नहीं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित पावन, सारी दुनिया का पतित पावन, सारी पतित दुनिया को पावन बनाने वाला, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वे तो आता है अपने धर्म की स्थापना करने के लिए। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहां है, पहले क्राइस्ट आया फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, वे कोई पतित को पावन नहीं बनाते, वे पतित को पावन, वो क्या करते हैं वहां पर, प्रेयर करते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं, बस उनका और कोई काम नहीं है, उनके पास एक ही है, प्रार्थना करो कि भगवान हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर रहो, और कोई गलती हो गई है तो वहां जाओ उसको सुनाओ, आप उसको अपनी गलती सुना देंगे तो यीशु भगवान जो है वो आपको माफ करेगा। सुनेगा कौन, पादरी, पादरी, जो भी चर्च का पादरी होगा वो सुनेगा, परंतु वो देखेगा नहीं कि सुनाने वाला कौन, वो देखेगा नहीं। आप घंटा बजाएंगे, हम कोई दुखिया हैं और हम अपना दुख सुनाने के लिए आए हैं, हम प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, तो वहां से पादरी आकर पर्दे के पीछे बैठ जाएगा, मतलब उस पर्दे को हटा नहीं सकते, और वो आकर बोलेगा हाँ सुनाओ, आप जो सुनाना है जो भी आपके अंदर है वो सुनाओ, वो देखेगा नहीं आपको, बस खत्म। उसको ये है कि तुमने सुन लिया, अब तुमने नहीं सुना, ये यीशु ने भगवान ने सुन लिया, अब तुमने किसी को बताना, चाहे वो उसका क्यों ना जान भी जाए, आवाज पहचान भी जाए, तो भी वे उसे बताएगा नहीं, ये मतलब पादरी ने प्रतिज्ञा की हुई है, इसको बोलते हैं कन्फेशन, अपनी जो प्रायश्चित करना, किसी भी प्रकार गलती को स्वीकार करना कि मेरे से ये गलती हुई है, और वो समझते हमने भगवान को सुना दिया तो भगवान हमें क्या करेगा, माफ करेगा। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, माफ नहीं करेगा, सुना दो आधा माफ कर दूंगा, कहते हैं ना बाबा, करना पड़ेगा, आधा माफ कर दूंगा यदि आप मुझे सुनाकर सेल्फ को रियलाइज करते हो और अपने आप को फिर गलती करने से रोकते, नहीं तो तुम गलतियां करते रहते। वे कोई पतित पावन नहीं, नंबर वार उनों की संख्या आती है, पतित पावन तो इस समय चाहिए जब सारी दुनिया क्या हो जाए, कब्र दाखिल हो जाए, सबको पावन बनाने वाला एक वही है, ये तुम समझते हो, बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत है, सारी दुनिया क्या हो गई है, जड़ जड़ी भूत है। बेनियन ट्री का मिसाल है ना, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। उसका फाउंडेशन क्या है? सड़ा हुआ है। बाकी टाल टालियां सारी खड़ी है। ये भी झाड़ है देवी देवता धर्म का, जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है। बाकी सब है, बीज हो तो फिर से स्थापना करे ना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था, अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था, देवी देवता धर्म जो था, वे प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे थे ऊंच था, भारत जो ऊंचे थे ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ। काम चिता पर बैठने से ग्रहण कैसे लगा? काम चिता पर बैठने से इस समय सारी तुम्हारी पुरानी तुम्हारी आत्मा क्या हो गई है? काली हो गई। काम चिता पर बैठने से तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला एक बाप ही है, जिसे क्या कहते हैं? परम पिता, परम आत्मा। उनकी श्रीमत मिलती है परम पिता परमात्मा की आत्मा, परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है, सदा आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल है ना। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत, सबका मौत। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उसकी राख को सब जगह गिराया, हेलीकॉप्टर में डाल के रात के खेतों में फेंक दिया, खेतों में समझा अच्छी खाद मिलेगी। पंडित पंडित आइए अपना इसका क्या बोलते हैं कश्मीरी पंडित, हाँ जी ये कश्मीरी पंडित था। इंदिरा गांधी ने शादी पारसी से की, उसने मुसलमान से नहीं पारसी से शादी की। जवाहरलाल नेहरू हिंदू था, इंदिरा गांधी का जो पति है वो पारसी था, फिरोज गांधी उसका नाम था फिरोज खान, तो मुसलमान का नाम हो गया, परंतु वो वास्तव में वो पारसी था। बाप हाँ तो उसमें राख डालते हैं, चाड़ में कीड़ा लग जाता है ना, पौधों को कीड़ा लगता है तो उस पर क्या डालते हैं, राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी, कितनी राख मिलेगी? इस समय भी हजारों एकड़ जमीन जल चुकी है और लगातार जल रही है। आग बुझाने का कोई तरीका समझ में, बहुत सारे जंगलों में, बहुत देशों के जंगलों में आग लगी पड़ी है और जो आग बढ़ती जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाना मुश्किल हुआ। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज देगी? जब इतनी सारी दुनिया जल कर प्योर हो जाएगी, फिर सृष्टि कैसे नहीं सतयुग में शक्तिशाली अनाज देगी? सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम तो लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो, क्या विचार करो, कितनी खाद मिलेगी? सो भी खास भारत को, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस समय और कोई खंड नहीं होगा। वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी, फिर नई दुनिया के लिए खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं, बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सूबी रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके। सूक्ष्म वतन ही नहीं है तो सूक्ष्म वतन में बगीचा कहां से हो? सूक्ष्म वतन में बगीचा तो हो ना सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सके। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई का लिटरेचर दिया तो, कोई को आपने लिटरेचर पकड़ा दिया तो देखकर फेंक देगा, तो पता नहीं क्या लिख रखा है, कुछ भी समझेगा नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, ये ढिंढोरा पिटवाना है, तुम्हारा फर्ज है ढिंढोरा पिटवाना। बरोबर यादव कौरव भी महाभारी लड़ाई थी, बरोबर कौरव पांडव भी थे और यादव कौरव भी थे और महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता की करत न लगी बात। किसको किसको देर नहीं लगी, देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को तो क्या कहेंगे, क्षत्रिय। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, कितने ढेर सिक्की लदे बच्चे हैं, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। बाप ये बाप भी कहते हैं लाडले सिक्की लदे बच्चे, तुम 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी सावरेंटी, डीटी वर्ल्ड सावरेंटी इज योर बर्थ राइट, देवी देवताओं का आगे प्राप्त करना, राजधानी प्राप्त करना, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, ये है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, उस सौगात के लायक तो बनना ही है ना। श्री मत पर चलना है, मम्मा बाबा कहकर अगर भूल जाए, मम्मा बाबा कहकर अगर भूल जाए या पारकति दे दे, तो क्या होगा, गले का हार नहीं बनेगा। तलाक दे दिया शिव बाबा को, सो गया, तो फिर गले का हार नहीं बनेगा, गले का हार बनना मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते, बाप क्या करते है? बच्चे को उठा के सिर पर बिठा देते, देख तू सबसे ऊंचा है। वेद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं, पांव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं, तो जो पांव में जाके पड़ते थे मूर्तियों के पांव में पड़ते थे, अब बाबा कहते मैं तुम्हें सिर पर बिठाता, सिर है ही नहीं, ऐसे सिर पर बिठाता। कितना खुशी में रहना चाहिए और श्री मत पर चलना चाहिए, एक की श्री मत पर चलना है बस, एक शिव बाबा, अपनी मन मत पर चल, अपनी मन मत पर चला तो ये मरा, श्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे, बनेंगे बाबा पूछते हैं, बनेंगे तो बाबा पूछते हैं, ना कि कितने नंबर में पास होंगे, बाबा पूछते हैं कितने नंबर में पास होंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बाबा भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है हेवनली, बिना स्वर्ग के बाप के बन नहीं सकते। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाना है दुनिया को, पहले खुद सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अपने बुराइयों का गला काटना है, फिर सबको बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया, कितने को, कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को 7 रोज में बहुत अच्छा ढंग से रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल चढ़ता ही। बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद का बाप, बेहद का बाप, बेहद के बाप को जानते हो? कहते हैं हाँ, वो मेरे में भी है, तेरे में भी है और सर्वे कण कण में बेड़ा गर्क कर दिया, सब की नावें डूब गई, फिर पूछने की दरकार ही नहीं है उसको। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले पहले क्या समझाओ, अलग पर समझाओ, अलग है ना, अल्लाह। बाप कहते हैं मेरे सिक्की लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके सिक्की लदे बच्चे। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं, 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, मात पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी, याद की धुन में रहना है, याद की धुन में रहना है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भाव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग करते, स्वमान में स्थित रहते, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बना देते, पूरे कल्प। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा। प्रजा कब होती है और भक्त कब होते हैं? सत्ययुग त्रेता में होती है प्रजा, जो राजा का सम्मान करती है। द्वापर कलयुग में होते हैं भगत, जो आपकी मूर्तियों का सम्मान करते। प्राप्त करते हो इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन है, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो। हर कदम, हर कदम मतलब अपना हर कर्म ऐसा करो जो सबको सुख देने वाला हो, उनके दिल से दुआएं मिलती रहें, तो आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।